देव चिन्ह धृक्ष शूद्र कोशो गाम यहाँ बना लो। मैं सोचता कि को असो कौन ये था, ये को अलग शब्द है, लेकिन यहाँ शूद्र को जो है एक शब्द है, शूद्र को शूद्र कहा। तो अनुवाद मेरे किसी बोलिए, सौनक ऋषि ने पूछा महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, इसमें प्रश्न करने की कला हमें सीखनी है कि क्या कला है प्रश्न करने की। जो श्रोता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहेगा, है ना। उन्होंने प्रश्न किया लेकिन फिर क्या कहा कि उत्तर आप तभी देना जब इस बात का कृष्ण कथा से संबंधित हो, ये बात कृष्ण कथा से संबंधित हो तभी आप उत्तर दीजिए, नहीं तो उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता होने चाहिए कि कृष्ण को जो है केंद्र बना करके ही बातें करते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत इसीलिए इतना दिव्य है कि जो श्रोता हैं वो क्या सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा ही सुनना चाहते हैं, है ना। ये नहीं कि बातों बातों में चली बात तो कुछ और बातें चल गई, फिर वहाँ क्रिकेट का जो खेल हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की तो वो चर्चा चलने लगी, फिर और उसके बाद और आई ओलंपिक है ये है वो है दुनिया भर की बातें और पूरा दिन उसी में बीत गया। इतने सावधान हैं, इतने सचेत हैं, है ना, कि हम सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं तो हम क्या सुन रहे हैं। वो कृष्ण कथा से कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं, है ना। और फिर कृष्ण कथा से कहीं और कथा तो नहीं शुरू हो गई, तो दूसरी चर्चा तो नहीं शुरू हो गई। तो होता है ना ऐसा कि कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठे थे और फिर सुनने लगे कुछ और कथाएँ और फिर कृष्ण चल गया तो न्यूज़ पेपर की बातें आ गई, न्यूज़ पेपर में ये आया, रेडियो में ये आया, टी वी में ये आया, ये समाचार और शुरू हो गया चर्चा, है ना। ये जो है मतलब है विधि कि कृष्ण का ही स्मरण करना, कृष्ण का ही स्मरण कराना। ते सभाग्य मनुष्य सुकृतार्था निर्मिष्टम स्मरण की स्मारयंती हरे नाम कलौ। तो वही अत्यंत भाग्यशाली है मनुष्य में और कृतार्थ हैं निश्चित रूप से जो कृष्ण का स्मरण करें और कृष्ण का स्मरण कराएं कलयुग में। देखिए श्रीमद् भागवत का जो विषय है वो क्या है, कृष्ण कथा है, आपकी प्रश्न से पता चलता है। उन्होंने कितना अच्छा प्रश्न किया है, तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं। जिला प्रभुपाद जी की सोनम कथा ऋषिगण ये सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला, है ना। देखो प्रश्न से जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे पता नहीं चलता ये बात। संस्कृत के जो शब्द हैं अनुवाद में तो प्रभुपाद ने दी अनुवाद उस तरह का अनुवाद जो है, लेकिन संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें क्या है, कष्ट है तो निज ग्राह है कलिन दिग्विजय ने कहा कि किस कारण से कलयुग को दंड दिया, निज ग्राह है ना, दंड दिया किस कारण से दंड दिया, है ना। लेकिन ना अनुवाद में प्रभुपाद ने दिया है कि केवल दंड क्यों दिया, उसको मार करने वाला, है ना। ये जो है भाव ये है, नहीं तो ऐसे में तो लगता है कि सोना किसी ने पूछा कि क्यों दंड दिया, स्पष्ट है तो नहीं जग रहा है कि नहीं। तो इसलिए हमें आचार्यों की मुख से हमें सुनना चाहिए। अनुवाद भी जो है प्रभुपाद ने जो दिया है वो भी भाव का अनुवाद दिया है, ये भावानुवाद है, तात्पर्य तो है ही है है ना। लेकिन इस श्लोक का जो अनुवाद है, अगर शब्द का अनुवाद किया जाए तो शब्द का अनुवाद क्या है कि किस कारण से कन्या को दंड दिया। हाँ, लेकिन वास्तव में क्या है कि निर्देश चिन्ह धृत शूद्र, एक तो शूद्र है राजा का चिन्ह धारण किए है ना, चतुर्दंड दंड उसको मिलनी चाहिए। और फिर दूसरी गांव के यहाँ पता है गाय को जो है लात मार रहा है ना, तो ये सोनक ऋषि ये नहीं पूछ सकते कि किस कारण से दंड दिया। जब वो स्वयं ही प्रश्न में कह रहे हैं कि जो गाय को जो है लात मार रहा है, लात मार रहा है और शूद्र होकर के राजा ने चिन्ह धारण किए है ना, तो उसको क्या मिलना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने उसको मृत्युदंड क्यों नहीं दिया, तो प्रश्न ये है वास्तव में है ना। तो यहाँ पर ये जो है समझना, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंड ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला है ना। क्योंकि इस श्लोक संख्या 4 में आया है, निजग्रह हो जसा वीरा कलिम बीज में जय कुशल निपलिंग धर्म शूद्रम निरंतम गो मिथुनम सदा। निजग्रह है ना, किसको दंड दिया। यहाँ पर बात यही है कि वो जो है इसलिए श्लोक में था कि निपलिंग धर्म राजा हूँ, राजा का जो है देह धारण किए हैं, जबकि सूत्र है और दूसरा गो मिथुनम गाय और बैल। गो मिथुनम का मतलब गाय और बैल की जोड़ी को जो है वो क्या कर रहा है, पता घनंतम पैर से मार रहा है, पैर मार रहा है, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए है। फिर गाय की हत्या करने वाले को है आप सोच सकते हैं क्या है? और उसको फिर क्यों ना मृत्युदंड दिया जाए जो गाय की हत्या करता है ना। गाय को लात मारने से भी जो है व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए, ये मतलब कहने का है। अगर ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड मिलना चाहिए तो गाय की जो हत्या करने वाले उनको है? उनको फिर क्यों ना मिले। आगे प्रोपर लिखते हैं, इसलिए सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वो ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो राजा का वेश बनाए कोई सूत्र, कोई भी व्यक्ति राजा का वेश बनाए तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। आप बोलिए क्या विधि है, ये विधि है। आजकल तो कोई राजा ही नहीं है, आजकल तो क्या है जनतंत्र है ना, प्रजातंत्र, तो प्रजा ही राजा है ना। सब सब राजा बने हुए, सब अपने अपने घर बना रहे हैं, महल की तरह बना रहे हैं, सब अपना बढ़िया कार, सबके अपने सब अपने अपने राजा हैं, हर कोई राजा है। लेकिन जब राजतंत्र होता था तो राजा के जो चिन्ह है वो किसी को अधिकार नहीं धारण करने का। राजा का चिन्ह होता है कुछ, जो भी राजा का वेशभूषा है तो राजा का चिन्ह होता है, तो किसी को अधिकार नहीं है कि राजा का चिन्ह धारण करने। आप सुन ये दिव्य है ना। जैसे कि श्रीमंत कटमणि जो है जब सत्यराजित को मिली तो सूर्यदेव की पूजा करने से सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के सत्यराजित को श्रीमंतकमणि दी। तो श्रीमंतकमणि जो है बड़ी अद्भुत है, जो संसार की इस पृथ्वी की चीज तो है नहीं, श्रीमंतकमणि रोज 8 भार सोना प्रदान कर देती है, सूर्य की तरह चमकती थी, गले में बांधे थे सत्यराजित, तो जब आ रहे थे तो दूर से लगता है कि सूर्यदेव आ रहे हैं, मतलब सत्यराजित का शरीर नहीं दिखाई पड़ रहा है, सूर्य आ रहे हैं। जब भगवान कृष्ण से मिलने आए सत्यराजित तो भगवान ने क्या कहा कि ये जो मणि है ये राजा को दे देना चाहिए, राजा अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी अद्भुत चीज़ें जो होती हैं वो प्रजा को अपने पास नहीं रखना चाहिए राजा को। और राजा कहाँ है, द्वारका के कृष्ण नहीं उग्र से भगवान स्वयं जो है इतना उनके अंदर त्याग है, कंस को मार करके उग्रसेन को राजा बनाए थे भगवान ने, कंस को मार करके उग्रसेन को राजा बनाया था और स्वयं उग्रसेन की सेवा में थे। तो उन्होंने कहा था कि राजा को दे दो, मतलब किसको, उग्रसेन को, उग्रसेन को दे दो, अपने लिए शोभा नहीं देती, भगवान स्वयं भी जो है वो चीज़ें नहीं धारण करते हैं, भगवान द्वारका में जो है, वैसे द्वारकाधीश भगवान कहलाते हैं, हैं सब कार्य जो है उनकी इच्छा से होते हैं, उनकी आज्ञा से होते हैं, लेकिन वे उग्रसेन महाराज की आज्ञा से काम करते थे। और उग्रसेन महाराज जो है जानते थे कि कृष्ण ही जो है सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन तो भी भगवान उनको सम्मान देते थे और राजा के सिंहासन पर बैठाते थे और स्वयं जो है सभा में बैठते थे नीचे। उग्रसेन को भगवान इतना सम्मान देते थे और कंस का वध किया तो उग्रसेन थोड़े चाहते थे कि वो ये राजा में, वो तो चाहते कृष्ण राजा में, लेकिन उग्रसेन ने जो है जो कंस का विरोध किया था उससे भगवान इतने प्रसन्न थे कि राजा बनने योग्य हैं। तो उग्रसेन के सामने ही कंस जो है देवकी के पहले पुत्र को मार रहा था सभा में। राजा उग्रसेन जो है सिंहासन पर बैठे थे और कंस कौन था, युवराज था, युवराज सभा में वसुदेव जी लेके आए सबसे पहले पुत्र को और कंस ने क्या किया, मारना चाहा। उग्रसेन ने आदेश दिया अपने सब सेना को, इसको बंदी बनाओ, अपने पुत्र को बंदी बनाओ, इसको बंदी बनाओ। और कंस के जो है सब मिले जुले इतने सब असुर, असुरों की सेना और यादवों की सेना में जो है खून खच्चर हुआ वहीं पर ही सभा में ही, और असुरों की सेना में बड़ी शक्ति थी, है यादवों की सेना को हरा दिया। और उग्रसेन कंस को बंदी बनाना चाहते थे तो कंस ने उग्रसेन को बंदी बना लिया और सुन स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। आप सुन लें, और उग्रसेन जो है उग्रसेन बंदी हो गए तो उन्होंने कंस से समझौता नहीं किया कि ठीक है बेटा तेरी जो अच्छी जो तुझे अच्छा लगे तू कर, तुम भी खुश हो मैं भी खुश हूँ, ये नहीं है जैसे धृतराष्ट्र ने किया। धृतराष्ट्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र विरोध करता था दुर्योधन का, जब दुर्योधन जिद करता था तो धृतराष्ट्र कहता था ठीक है बेटा जो तुझको अच्छा लगे तू कर, तुम भी खुश मैं भी खुश। तो धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया, दुर्योधन को मार करके भगवान ने धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। क्यों, धृतराष्ट्र के हृदय में कमजोरी थी, हृदय की दुर्बलता, क्यों पुत्र के मोह में वो जो है फिर धर्म अधर्म का निर्णय नहीं करता था। आप समझे, लेकिन उग्रसेन में ये हृदय की दुर्बलता नहीं थी कि मेरा लड़का है, मेरा लड़का वो कोई भी हो अधर्म कर रहा है उसको बंदी बनाओ। उसने बलपूर्वक अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं राजा बन गया। कंस को मार करके भगवान ने फिर उग्रसेन को राजा बनाया, है ना। तो इस श्लोक के विषय थोड़ा मैं दूर हट गया हूँ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान ने शत्रुघ्न को क्या कहा कि राजा के पास इस मणि शोभा देती है, तो भगवान ने ये कहा था। तो कहने का मतलब है कि शूद्र जो है कोई भी प्रजा हो राजा की तरह अपना घर नहीं बना सकते, कोई राजा की तरह जो है जो ठाक बाट और शान राजा की होती है किसी प्रजा को जो अधिकार नहीं होती, वो उस तरह से रहे। शिष्टाचार भी, शिष्टाचार भी है, जैसे मैं बैठा हूँ व्यास आसन पर तो ये आसन मुझे जो दिया गया है और जो आप श्रोता हैं है? तो किसी को अधिकार नहीं इसी तरह से आसन पर बैठे आसन लेना है ना। अब जिनके पैर में तकलीफ है तो बैठे हुए हैं कुर्सी पर तो अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि भाई मैं भी ऐसे ही बैठूँगा, है कि नहीं। ये शिष्टाचार है कि जो सुनने वाले हैं वो जो है नीचे रहें और बोलने माला बढ़ता है उसको ऊँचा आसन दिया जाए। तो राजा का जो है जो भी रहन सहन है जिस तरह का उनका जो है बैठने का है और रहने का और जीने का जो तरीका है उस तरह का जो है हर व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी अच्छी चीज़ें हों कोई भी अच्छी चीज़ मिले राजा को भेंट देना चाहिए उसको, ये प्रजा का धर्म है ना। तो राजा की तरह मुकुट धारण कर ले, राजा की तरह कपड़े पहन ले, है ना। तो ये जो है विधि नहीं है, ये विधि के विपरीत है। इसी प्रकार से है जैसे पुलिस का जो व्यक्ति होता है उसके पास पुलिस के चिन्ह होते हैं जिसे पता चलता है कि पुलिस का अधिकारी है ये, है कि नहीं। और पुलिस के अधिकारियों के भी है जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी कुछ और चिन्ह होते हैं और बड़े अधिकारियों के और चिन्ह होते हैं। तो ये अधिकार नहीं है कि आप ही पुलिस के चिन्ह धारण करें, नहीं ना। पुलिस का चिन्ह पता चलता है कि नहीं। जिस राज स्त्रियाँ जो है जो विवाहिता हैं उनका कुछ चिन्ह होता है, है मांग में सिंदूर है कुछ चिन्ह होता है, इससे पता चलता है कि ये विवाहिता है। उसी प्रकार से वैष्णव का चिन्ह होता है, है तिरक है, कंठी माला है, है ना, जप माला है, ये वैष्णव का चिन्ह है। तो वैष्णव का चिन्ह आपको धारण करना, लेकिन आप नहीं कह सकते हर व्यक्ति को भी आप भी तिरक लगाया करो, क्या कहते हैं क्या नहीं कहना चाहिए। जब तक वैष्णव के नियम का पालन नहीं करते हैं आपको ये नहीं कहना कि भाई आप भी तिलक लगाओ, ये तिलक लगाने लगे जो आए उसे उसको तिलक लगा रहे हैं, क्योंकि वैष्णव का तिलक जो है तब होना चाहिए जब आप चार नियम का पालन करते हैं, कम से कम एक माला तो जाप करो हरे कृष्ण मंदिर में, कि नहीं तो चिन्ह है ना, जिसे पहचान होती है कि भाई ये वैष्णव है, कम से कम एक माला भी जाप करे हरे कृष्ण मंत्र की और कोई दूसरे मंत्र की नहीं, कि ओम नमः शिवाय की ओम 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 जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं नहीं। किस प्रकार से जो है चिन्ह यहाँ पर जो है क्या है कि विस्मित थे, किसे मार क्यों नहीं डाला, इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्य आत्मा राजा को चाहिए कि वैसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का जो साहस करता है, अपमानित करना गाय का अपमान करना, जैसे कि जो ग्वाले हैं ग्वाले भी जो है गाय चलाते हैं तो उनके साथ डंडा होता है, डंडा होता है ना, और रस्सी होती है ना, डंडा और रस्सी दोनों होती हैं उनके पास, लेकिन गाय मारने के लिए वो डंडा जो है वो रखते हैं, गाय को मारने के लिए नहीं रखते हैं, गाय को डंडे से प्रहार करने के लिए नहीं होता है, डंडा केवल दिखाया जाता है गाय को डराने के लिए और उसी की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के ही लिए कि वो कहीं गलत रास्ते में ना जाए, घर में ना जाए, उसकी रक्षा के लिए डंडा से उसको डराया जाता है ना। और जो रस्सी होती है अगर वो जा रही है तो दो से खेप करके उसको उसके गले में रस्सी फंसाएँ ताकि उसको खींच सकें। गाय की हत्या में बहुत दूर की बात है, गाय को जो है प्रहार करना, फिर पैर मारना, गाय को पैर मारना और भी ज़्यादा गलत है। ये सब कुछ जो है कुछ बातें हैं जो कि जानना चाहिए, आवश्यक है जानना, गाय के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, गाय को डराया जाता है, गाय को डांटा जाता है, जैसे अपनी ही माता अगर मान लो पागल हो जाए तो उसकी रक्षा के लिए कभी आप उसको डांट सकते हैं, कठोर व्यवहार कर सकते हैं, है ना, लेकिन साथ सम्मान करना ही है क्योंकि माता है, है लेकिन माता कैसी है, पागल है, अगर पागल हो जाए माँ है ना, और इधर उधर जाए तो उसको पता नहीं कहाँ जाना है क्या करना है, तो उसको खिलाने पिलाने के लिए कभी आप डांट सकते हैं उसको, है ना, लेकिन साथ साथ सम्मान भी करना है कि वो माता है। उसी प्रकार की जो गाय है ना माता है, लेकिन कैसी माता है, पागल है, पागल है वो, है ना, उसको सही से पता, जैसे बच्चे की बुद्धि होती है उसी प्रकार से वो भी जो है उसके पास दिमाग नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, तो उसी सुरक्षा के लिए आप जो है उसको डांट सकते हैं, डरा सकते हैं, है ना, ये विधि है माता है। तो यहाँ पर रूपा लिखते हैं, उस काल के ऋषियों ने ये स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम सूत्रों को प्रशासक के रूप में सुना जाएगा। प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत बड़ा गहरा तात्पर्य है ना, निम्नतम सूत्रों को प्रशासक के रूप में सुना जाएगा है? और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे, खुले कोई व्यक्ति पैर मार रहा है, गाय को लात मार रहा है तो उसका हत्या मृत कर दिया जाए, इतना इतना ज्यादा आगे जो हो वे दत्त ऋषियों को उस सूत्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था फिर भी वे इसके विषय में ये जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। श्लोक संख्या चार में क्या लिखा है, कलिन कलयुग था ये, मतलब ये तो समझ गए कि ये कलयुग था जो कि शूद्र राजा के रूप में, राजा का चिन्ह धारण किए शूद्र, इस रूप में वो प्रकट हुआ कृष्ण महाराज के सामने। आगे क्रम पर लिखते हैं, ये केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वो श्रवण करने योग्य होता है। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित हैं। देखिए क्या है, समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, राजनीति, भगवद्गीता, भगवद्गीता भी क्या है, राजनीति शास्त्र है, ये राजनीति है। भगवान ने अर्जुन को जो दिया कि तुम युद्ध करो, है ना, तो राजनीति है युद्ध करना। तो ये सब जो है क्या है, कृष्ण कथा है, कृष्ण को केंद्र बना करके हर कार्य जो है किया जा सकता है। आगे अतएव वे सब के सब श्रवणीय है, कृष्ण सभी मामलों के शुद्धकर्ता अवयव है, चाहे वे जैसे भी हों, शुद्धकर्ता अवयव मतलब हर चीज में, किसी भी चीज में अगर कृष्ण से आप जोड़ देते हैं कोई भी विषय, तो वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, आपने कृष्ण को उसमें डाल दिया। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्धकर्ता तत्व है। तो जहाँ भी जो है कृष्ण से संबंध हो जाता है कोई भी चीज, तो वो क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, है ना। जैसे महाभारत के युद्ध है ना, तो ऐसे लगता है कि भाई ये जो है आपस में एक कुल में जो है कुछ झगड़ा हुआ, पारिवारिक झगड़ा है, ऐसे पारिवारिक झगड़े होते रहते हैं और इसमें मार धाड़ है, इतना ज़्यादा नरसंहार है, हत्या है ना, ये जो है इससे हमें क्या लेना। लेकिन इसमें चूंकि कृष्ण भाग ले रहे हैं, कृष्ण चूंकि इसमें भाग ले रहे हैं, है ना, इसलिए क्या हो गया, ये पवित्र हो गया, है कि नहीं। तो चूंकि कृष्ण है इस स्थान में, इसलिए स्थान भी पवित्र हो गया, है ना, तो सब कुछ पवित्र हो गया। यहाँ तक कि कितने असुर, जैसे कंस जैसे असुर, कितने उनके जो है गलत कार्य थे, है ना, लेकिन कृष्ण के हाथों मारे गए, है ना, तो क्या हो गए, पवित्र हो गए। इस तरह से जो है यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब ये स्कंद पुराण का जो भागवत महात्म है उसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं जिससे पता चलता है कि वास्तव में ये जो घटना है इसका संबंध किसी और घटना से भी है। भागवत में तो ये बताया गया कि एक बार कलयुग परीक्षित महाराज दिग्विजय विजय के लिए निकले और कलयुग उनको रास्ते में मिला, इस प्रकार इस रूप में आया, है ना, जिसका कलयुग का उन्होंने दमन किया, परीक्षित महाराज ने दमन किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे संबंधित एक और घटना है, किस कारण से परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले थे, तो इसकी घटना जो है श्रीमद् भागवत महात्म्य में आती है जो स्कंद पुराण में, एक भागवत महात्म्य पद्म पुराण का है जिसमें 6 अध्याय मिलते हैं, धुंधुकारी की कथा है, गोकर्ण की कथा है, है ना, और दूसरा भागवत महात्म्य स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में जो है कुछ अलग ही प्रकार की बातें लिखी हुई हैं और बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य बातें हैं। इसमें यह बताया गया है कि जब परीक्षित महाराज को राज्य दे करके पांचों पांडव चले गए थे, उत्तर समय गए थे, तो परीक्षित महाराज को राजा बनाया था हस्तिनापुर का, और बद्रनाथ जो कृष्ण के कौन है, प्रपौत्र हैं, उनको मथुरा मंडल का राजा बनाया था, है ना।
तो
द्वारका तो डूब गई थी, है ना, द्वारका तो डूब गई थी। तो मथुरा जो है, मथुरा को छोड़ के भगवान द्वारका चले गए थे जरासंध के कारण। तो मथुरा जो है स्थान खाली पड़ा था मथुरा मंडल का। तो मथुरा मंडल का शासन जो है बैद्यनाथ को सौंप दिया पांडवों ने, द्वारका से लेकर के आए थे, कृष्ण की पत्नियों को भी लेके आए थे, अर्जुन बैद्यनाथ को भी लेके आए थे। तो रास्ते में कृष्ण की कुछ पत्नियां तो जो है को जो है गोपों ने हरण कर लिया। वास्तव में गोप भी जो है भगवान कृष्ण ही उन गोपों के रूप में आए थे, अर्जुन पहचान नहीं सके थे उनको। तो और कुछ जो कृष्ण की पत्नियां जो बची थी अर्जुन के साथ में, उनको मथुरा में बैद्यनाथ के सुरक्षा में उन्होंने रख दिया था। तो कृष्ण की पत्नियां बैद्यनाथ की सुरक्षा में मथुरा में थी। तो एक बार परीक्षित महाराज बैद्यनाथ के पास आए, तो परीक्षित महाराज बैद्यनाथ के कौन लगेंगे आप बता सकते हैं? परीक्षित महाराज अर्जुन के कौन है? पौत्र हैं। और बैद्यनाथ कृष्ण के कौन है? प्रपौत्र हैं। अर्जुन और कृष्ण बराबर धरातल के हैं, है? तो परीक्षित महाराज बैद्यनाथ के कौन लगे? चाचा, हाँ, पिता के समान, पिता के समान। तो परीक्षित महाराज जो है बैद्यनाथ के पास आए, लेकिन वे बैद्यनाथ का सम्मान करते हैं क्योंकि ये भगवान कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हैं और वे उनके कुल देवता हैं। परीक्षित महाराज के कुल देवता भगवान कृष्ण ही हैं। तो बैद्यनाथ से परीक्षित ने कहा कि आप जो है मुझे बताइए, आपको कोई शत्रुओं से कोई परेशानी हो या किसी प्रकार की असुविधा हो, आपका राज्य सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो कोई भी कार्य हो तो आप मुझे सौंपिए और आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपका सेवक हूँ। तो बैद्यनाथ ने जो है परीक्षित महाराज को कहा कि आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ प्रजा नहीं दिखाई पड़ रही। सब प्रजा कहाँ गई? मथुरा मंडल का अलग 84 कोष, 84 कोष जो ब्रज मंडल जिसको बोलते हैं, तो नंद महाराज और यशोदा और जितने गौ में और कितने गोप थे, कितनी गोपियाँ थी, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये बड़ा रहस्य है। तो फिर परीक्षित महाराज सांडिल मुनि को लेके आए कि इसका रहस्य बताइए क्या है। सांडिल मुनि ने फिर बताया कि भगवान कृष्ण गए हैं तो वो जो स्थान है पूरा 84 कोष का ब्रजमंडल, वो भूमि भी अपने साथ ले गए, तो जितने भी भगवान के संगी थे उतने तो भगवान के साथ जो लोग धाम। अब वो फिर भी ये स्थान तो बहुत पवित्र है, तो बैद्यनाथ को उन्होंने आदेश दिया सांडिल मुनि ने कि तुम जो है अलग अलग स्थानों में भगवान की लीला के जो चिन्ह हैं वो बनवाओ। बैद्यनाथ ने कहा और तुम्हें मेरी कृपा से वो स्फूर्ति होगी कि किस स्थान में भगवान की कौन सी लीलाएं होंगी, उन स्थानों के नाम इस प्रकार से करो, जैसे अरिष्टग्राम, अरिष्टासुर का जहाँ बच गया अरिष्टग्राम, तो वो नाम करो, है ना, राधाकुंड, श्याम कुंड, उनको भी जो है बनवाओ। तो इस तरह से बैद्यनाथ ने जो है अलग अलग स्थानों के नामकरण किए और उनके जो है वहाँ आचार्य विग्रहों की स्थापना करी बैद्यनाथ ने। फिर जो कृष्ण की पत्नियाँ हैं तो वो यमुना जी को देख करके पूछने लगे कि तुम्हें कृष्ण का ग्रह नहीं सता रहा है, हमें तो कृष्ण का ग्रह सता रहा है, तुम भी कृष्ण की पत्नी, हम भी कृष्ण की पत्नी हैं, तो ये क्या कारण है कि तुम्हें, तुम तो प्रसन्न हो और हमें कृष्ण के ग्रह का बहुत कष्ट हो रहा है। तो यमुना जी ने फिर मतलब बताया कि राधा रानी की सेवा के कारण हमें जो है कृष्ण के ग्रह का अनुभव नहीं होता है और तुम लोग भी जो है राधा रानी की सेवा में लगो, लेकिन इसके लिए, इस कार्य के लिए अब उद्धव जी की सहायता की आवश्यकता है। और उद्धव जी जो है कुसुम सरोवर में निवास करते हैं, लता लताओं के रूप में, तो वहाँ जो है उनको जो है आप उनके दर्शन करो और वो जो है आपको कृष्ण की लीला में आपका जो है प्रवेश कराएंगे। तो ये बात जो है बैद्यनाथ को कृष्ण के पत्नियों ने बताई, तो बैद्यनाथ ने कुसुम सरोवर में वो जो है संकीर्तन उत्सव कराया। संकीर्तन से शुरू कराया। तो उस उत्सव में जो है उद्धव जी प्रकट हो गए। अब उद्धव जी जो है प्रकट हो गए तो उद्धव जी परीक्षित से कहते हैं, उद्धव जी परीक्षित से कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत का जो है पाठ करूंगा यहाँ पर। उद्धव जी परीक्षित से कहते हैं कथा बहुत लंबी है, मैं थोड़ा उसको यहीं से जोड़ रहा हूँ कि इस घटना से। तो उन्होंने कहा कि भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्त जनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। उद्धव जी ने कहा, किससे कहा? परीक्षा से कहा। ये सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, उद्धव जी आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें, इस कार्य में जिस प्रकार की सहायता करने आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। उद्धव जी बोले, परीक्षित का वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उद्धव जी ने कहा, राजन भगवान श्री कृष्ण जब से इस पृथ्वी तक का परित्याग कर दिया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। कलयुग का प्रारंभ तो हुआ था परीक्षित महाराज के जन्म से, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था, है ना। और परीक्षित महाराज का जन्म कब हुआ था? जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो गर्भ में थे परीक्षित, उत्तराखंड में थे। तो महाभारत के युद्ध के बाद उनका जन्म हुआ। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो समय से कलयुग आ गया था। यानी 36 साल तक फिर भी भगवान कृष्ण रहे पृथ्वी पर, तो कलयुग का प्रभाव नहीं फैल पाया, कलयुग दबा रहा, शुरू हो चुका था, है ना। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया, उनके चरण कमल उड़ गए इस पृथ्वी तल से, भगवान अपने गौरव धाम में चले गए, तो कलयुग का वह प्रभाव फैल गया, तब कलयुग ने प्रभाव शुरू कर दिया। जिस समय ये शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, क्या कि मैं श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा, तो बलवान कलयुग अवश्य इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा, कथा में विघ्न डालेगा कलयुग। श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलिः करिष्यति परम विघ्नं सत्कार्य समुपस्थिते। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। अब देखिए आज के श्लोक में है दिग्विजय, है ना, और इसमें भी है कलयुग का निग्रह करो। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसा स्वादन कराऊंगा। भगवान कृष्ण जब कथा सुनाते हैं लक्ष्मी जी को तो 1 महीने श्रीमद् भागवत की कथा होती है। तो भगवान विष्णु की विधि से मैं 1 महीने तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। उद्धव जी कह रहे हैं, और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। उस समय इतनी शक्ति थी लोगों की कि 1 महीने तक बिना खाए किए कथा सुनाई। तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं 1 महीने तक मैं श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा और इनको जो है कृष्ण की लीला में प्रवेश कराऊंगा, कृष्ण की लीला में प्रवेश हो जाएंगे। तो ये लोग भी फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे, और धोजी में दिखाई पड़ते नहीं, अभी दिखाई पड़ रहे हैं, और फिर इनको भी कृष्ण की लीला में प्रवेश करा देंगे तो ना उद्धव जी फिर दिखाई पड़ेंगे ना ये श्रोता लोग दिखाई पड़ेंगे सबको। इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गुरु धाम में पहुंचाऊंगा। तस्मात् दिग्विजयं याहि कलिनिग्रह महातरं अहं तु मास मात्रेण वैष्णवीं रीति मासिदा श्रीमन् भगवत् श्रीमन् भागवतास्वादं प्रचार्य त्वं सहायतः एतां सम्प्रापयिष्यामि नित्यधाम मधुदिशः। तो सूर्य जी कहते हैं उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे ये सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित रहना पड़ेगा। उस समय उन्होंने वे चिंता से व्याकुल हो गए। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। श्रुत्यवं तन्मचो राजा मुदितश्चिन्तया पुरः तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, परंतु क्या परंतु श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मेरा तो सौभाग्य है, मैं बड़ा दुर्भाग्य भी हूं। कलिम तो निग्रहिष्यामि तातेते वचसि स्थितः श्री भागवत संप्राप्ति कथं मम भविष्यति। अहम तो सनमुग्राय तव पादय तले स्थितः। मैं आपके चरण चरणों के शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको कृपा करना चाहिए। सूर्य कहते हैं उनके उस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। क्या कहा उद्धव जी ने, सबसे बड़े अधिकारी तुम ही हो कि तुम्हारी कृपा से ये लोग श्रीमद् भागवत सुन पाएंगे? कि श्रीमद् भागवत एक महीने तक चलेगी तो कलयुग सुनने नहीं देगा इन लोगों को। कलयुग आ जाएगा तो इनको अपने घर की याद आएगी, के चले जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा, है ना। तो परीक्षित महाराज की कृपा से तो ये लोग बैठ पाएंगे और कलयुग का निग्रह करेंगे। कलयुग यहां ना आ पाए, अब कलयुग का समय है, कलयुग का तो समय है, वो समय वो अपने समय पर आया है, और उसका समय 4,32,000 साल का है, है? लेकिन परिचय महाराज ऐसा निग्रह करेंगे, ऐसा कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर नहीं आ पाए। तो परिचय महाराज ने फिर उसको स्थान दिए, 4 स्थान दिए, फिर 5वां स्थान दिया, है, जहाँ मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा, है ना, ये 4 स्थान दिए। जब उसने कहा कि ये 4 स्थान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस समय ज़्यादा ये सब काम होते नहीं थे, गलत काम, मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा होते नहीं थे, और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो कहा ठीक है सोने में दो, है ना। तो पांचों चीज़ों की जो है यहाँ पर ठीक नहीं कोई चीज़, जहाँ उद्धव जी कथा सुनाएंगे ना तो हम मानता है ना व्यभिचार ना जुआ नशा ना सोना, है ना। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी महाराज ने यही सोच करके कलयुग को 5 स्थान दिए थे कि कलयुग यहाँ पर ना आए। कहाँ पर? कुसुम सरोवर में। कुसुम सरोवर गोवर्धन के पास है, राधा कुंड के पास, तो वहाँ पर जो है उद्धव जी 1 महीने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, ठीक है ना। और ये जो समय है ये उस समय था जब परीक्षित महाराज की आयु 36 साल की थी, करीब 36 साल तक भगवान कृष्ण रहे, और जो है महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक भगवान कृष्ण रहे, और 36 और महाभारत युद्ध के बाद ही परीक्षित का जन्म हुआ, तो परीक्षित क्या 36 साल की थी। भगवान कृष्ण चले गए तो पांडव लोग भी परीक्षित को राजा बना कर जीतने लगे, 36 साल की आयु थी, तो उसी समय की ये घटना है ना। तो उद्धव जी ने क्या कहा कि तुम सबसे ज्यादा अधिकारी हो श्रीमद् भागवत के, सबसे ज्यादा अधिकारी तुम ही हो, है ना, तुम चिंता मत करो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं, ये लोग आज तक आया भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे ही कृपा से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर 7 सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि सुखदेव जी साक्षात श्री हरि नंदन श्री कृष्ण के भक्त हैं, यही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तुम्हें भी संदेह नहीं है। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुखो भगवान श्री श्रीमद्भागवतम तुभ्यम साव्यश्यत्य संशयम्। उद्धव जी ने कहा, क्या कहा कि तुम्हें सुखदेव गोस्वामी श्रीमद्भागवत सुनाएंगे, हाँ, तो जब उचित समय आएगा तो तुम्हें सुखदेव गोस्वामी श्रीमद्भागवत सुनाएंगे। तो पृथ्वी महाराज को पहले से जैसे था कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुनेंगे। अब वो क्या कहते हैं कि वो भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत वो फिर प्रसिद्ध होगी भागवत के नाम से, जो सुखदेव गोस्वामी तुम्हें सुनाएंगे। आखिर है तो कृष्ण कथा नहीं, जो कृष्ण कथा सुखदेव गोस्वामी तुम्हें सुनाएंगे और तुम्हारी आयु के हिसाब से 7 दिन हैं, तुम जो प्रश्न करोगे और जो उत्तर देंगे तो वो श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी वो कथा श्रीमद् भागवत। अब उद्धव जी ने जो कथा सुनाई श्रीमद् भागवत की 1 महीने तक, वो तो कितने श्लोकों की होगी आप सोचिए, जो 7 दिन में जो सुनाई तो 18,000 श्लोक हुए हैं, तो उद्धव जी ने 1 महीने भर सुनाई तो कितने श्लोक हुए वहाँ, है ना, तो वो कथा तो कोई नहीं जानता। हे परिचित महाराज ने जो सुनी कथा उसी कथा को श्रीमद् भागवत के नाम से भारतवर्ष में लोग जानते हैं, आज पूरे विश्व में प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में लोग जानते हैं, तो परिचय महाराज के कारण अब जो है वो कथा श्रीमद् भागवत कहलाई। उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। तेन प्राप्त से राजन तुम नित्यम धाम निर्देशित हो श्री भागवत संचार तदोभवि भविष्यति। हे राजन परीक्षित तुम जाओ और कलियुग को जीत कर अपने वश में करो। तस्मात् त्वं गच्छ राजेन्द्र कलिनेन्द्र माचरय। उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिव्य विजय के लिए चले गए। इत्युक्त तम परिक्रम गतो राजा दिशां जये। तो कहने का मतलब ये है, मैंने इस कथा का कुछ अंश जो सुनाया वो केवल इस कारण में सुनाया कि ये जो कथा है ये आज के श्लोक से संबंधित है, है ना, दिग्विजय। तो परीक्षित महाराज को आज्ञा दी दिग्विजय के लिए किसने, किसने, उद्धव जी ने, उद्धव जी ने दिग्विजय करो। और किसने दिग्विजय करने के लिए जाओ, सब दिशाओं को जीतने के लिए जाओ कि कहीं कलयुग मिलेगा, कलयुग मिलेगा उसका निग्रह करो और इस तरह से निग्रह करो कि वो यहाँ ना आ पाए। और बस क्यों नहीं किया परीक्षित महाराज ने कलयुग का, परीक्षित महाराज ने कलयुग का बस क्यों नहीं किया है? हाँ, ये आगे आएगी कथा जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तो आगे आगे की कथा है कि उसने शरण ले ली थी, परीक्षित महाराज की शरण ले ली थी और जो शरणागत होए तो फिर उसका वध नहीं कर सकता कोई, है ना। दूसरा कारण और भी कि कलयुग का समय चल ही रहा है, ये निश्चित है, 432,000 साल तक कलयुग जो है अपना काम करेगा, ठीक है ना। परसी महाराज की कृपा से कलयुग जो है अभी इतने कंट्रोल में है कि हम लोग भी जो है कलयुग से जो है मुक्त हो सकते हैं, मतलब रक्षा हो सकती है। इसी 4 नियमों का पालन करना जरूरी है ना, इसलिए प्रभुपाद ने भी 4 नियमों पर जोर दिया, ठीक है ना। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और 4 नियमों का पालन करना, है ना, जो कि हरे कृष्ण मंत्र की जब से आप उस 4 नियम का पालन करने में सहायता मिलेगी, है ना। और 4 नियम का पालन करेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र जपने में सहायता मिलेगी, है ना, आप केंद्रित कर पाएंगे अपने मन को, है ना। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है आज के विषय पर? हाँ जी, अच्छा आपका भी कल याद है। कोई हैंड माइक नहीं यहाँ पर, एक हैंड माइक होना चाहिए। हाँ जोर से बोलो आप सबको सुनने का। जो भागवत को देख करके प्रणाम नहीं करता और खड़ा नहीं होता, उल्टा बोल दिया। सारे पुण्य नष्ट जाते हैं। नहीं ये कहाँ पर है आप? वो देखना पड़े कहाँ आपने पढ़ा है। अब भागवत का मतलब पुरुष भी हो सकता है, एक भागवत पुरुष होता है जो भक्त है और एक भागवत पुस्तक है शास्त्र, भागवत शास्त्र। तो ये जरूरी नहीं कि खड़ा होना ही है, प्रणाम करना है, कम से कम सम्मान तो करना ही चाहिए, है ना। आप इतना भी कर सकते हैं सम्मान, कम से कम इशारे से सम्मान तो कर ही सकते हैं। वो निर्भर करता है कैसी स्थिति है कि आप खड़े होने की स्थिति में है या नहीं। तो हमेशा खड़े होने की स्थिति नहीं होती कि हमेशा खड़ा हुआ जाए, ठीक है ना। और प्रणाम करने की स्थिति ऐसी होती है आप जमीन में पूरा सिर लगाएं, लेकिन कम से कम थोड़ा सम्मान तो करना चाहिए, थोड़ा इशारा तो करना चाहिए, ठीक है ना। इशारे से भी सम्मान किया जा सकता है किसी को, है थोड़ा सिर हिला करके सम्मान किया जा सकता है, सिर झुका के सम्मान किया जा सकता है, तो ये तो है ही है, ठीक है। और हाँ जी अच्छा है, कृष्ण की पत्नी स्वर्ण नहीं पहनी थी। इस विषय में विचार करना पड़ेगा कि स्वर्ण को जो है प्रसिद्ध महाराज ने स्थान दिया, कलयुग के स्थान दिया, लेकिन प्रभुपाद ने मना नहीं किया कि सोना नहीं पहना, स्त्रियाँ सोना न पहने। प्रभुपाद ने कहा है स्त्रियों को सोना पहनना चाहिए। प्रसिद्ध महाराज भी सोने का मुकुट धारण किए थे, तो कुछ व्याख्याकारों ने कहा कि प्रसिद्ध महाराज सोने का मुकुट धारण किए थे तो उनके मुकुट में कलयुग आ गया और उसी से प्रसिद्ध महाराज ने मरा हुआ सर्प स्वामी ऋषि के गले में डाला। लेकिन ये व्याख्या जो है प्रभुपाद की नहीं नहीं है, ये आपको व्याख्या इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन ये व्याख्या जो है किसी ने भी मतलब निकाल दी तो वो इतनी तेजी से फैल रही है, ये भी कलयुग की व्याख्या है, आसन है ये नहीं है। अब सोना को स्थान दिया तो सोने को मतलब ये कि मतलब अगर उसको कुछ उसका प्रयोग नहीं कर रहे, उपयोग नहीं कर रहे हैं और रखा हुआ है तो इसमें वो रहता है, आसन है। लेकिन अगर इसका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं तो नहीं। भगवान भगवान को भी सोना जो है भगवान के लिए सोने को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है ना। स्त्रियाँ भी सोना धारण करें, पुरुष भी सोना धारण करें, तो ये सब बताया है प्रभुपाद ने। इस पर और गहराई से विचार करना पड़ेगा। लेकिन परसे महाराज के सिर में आ गया और उनके दिमाग में बैठ गया, उनके सिर में बैठ गया, वो सोने का मुकुट था, इस कारण से उनकी बुद्धि खराब हुई, उन्होंने स्वामी ऋषि गले मरा सर बना। लेकिन वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो परसे महाराज कोई भी अपराध नहीं, जरा भी अपराध नहीं, 1% भी अपराध नहीं परसे महाराज का। आप सोचिए स्वामी ऋषि के आश्रम में परसे महाराज आए थे, है ना, तो बहुत प्यासे थे, है ना, उन्होंने जल मांगा। स्वामी ऋषि का भी कोई अपराध नहीं था, क्योंकि सचमुच वो ध्यान की इसकी इतनी गहरी अवस्था में पहुँच गए थे कि उनको पता नहीं चला। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि वे ध्यान टूटे नहीं, आप समझे। इसलिए ध्यान की स्थिति जो है, ये ध्यान की विधि क्या है, बिल्कुल एकांत हो, बिल्कुल एकांत हो, अकेले भी हो बिल्कुल एकांत हो। लेकिन ये भगवान की ऐसी कुछ इच्छा थी कि समय किसी ध्यान कितनी गहरी स्थिति में चले गए समाधि की कि परिचय महाराज आए उनको पता नहीं चला। परिचय महाराज का जो है कार्य था कि वो देखें कि ध्यान असली है या नकली है। अगर असली ध्यान है तो मरा हुआ सांप डालने से पता नहीं चलेगा, और अगर नकली ध्यान है तो उछल करके दौड़ेंगे बाप रे बाप, तो पता चलेगा कि असली ध्यान नकली ध्यान है। क्योंकि अगर नकली ध्यान है तो राजा की ओर से दंड मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो ध्यान का दिखावा करे, राजा आए राजा का सम्मान न करें। तो परीक्षा ये करना ये राजा का काम है, और परीक्षा करने की विधि भी बहुत अच्छी थी। मरा हुआ सर जो है डाला जिसमें कोई खतरा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में जो है परीक्षा महाराज की कोई गलती नहीं थी, जरा भी गलती नहीं थी, फिर जो गलती हो गई क्योंकि ध्यान असली था। तो ऐसे कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं जो हम अपराध नहीं करना चाहते हैं, अपराध हो जाता है, ठीक है ना। समय किसी ने अपराध नहीं माना जरा भी राजा का, है ना। जो श्रृंगी था बालक उसके दिमाग में कलेवर आया। अब सुनिए, ब्राह्मण का जो बालक था श्रृंगी उसके दिमाग में कलेवर बैठा कि उसने जो है मतलब राजा, ये राजा है, ये दुष्ट है, ये कुत्ता है, कुत्ता हम ब्राह्मणों के घर में कैसे आ गया, हमारे ब्राह्मण के घर में कुत्ता कैसे घुसा, ये राजा कुत्ता है, है और मरने का साम दिया, बहुत बड़ा अपराध उसका है। तो समीर किसी ने मैं भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक को क्षमा करें, तो बालक से भी कराया कि वो क्षमा हो जाए। लेकिन वास्तव में कलयुग का जो सबसे पहला जो प्रभाव था किसी व्यक्ति के ऊपर, वो किसके ऊपर था? श्रृंगी, श्रृंगी बालक के ऊपर, परीक्षित के ऊपर नहीं था। कि परीक्षित के ऊपर कलयुग का सवार, कलयुग सवार हो गया। अगर गहराई से देखा जाए तो जरा भी अपराध नहीं परीक्षण होगा। और समीर ऋषि ने मतलब जब पता चला कि राजा आए थे तो उन्होंने बड़ा शोक किया कि अरे इतने बड़े राजा आए, हमने उनका सम्मान नहीं किया। और राजा ने क्या किया, वो उन्होंने जरा भी उसको अपराध नहीं माना, जरा भी अपराध नहीं माना समीर ऋषि ने। आप समझ रहे, इसको समझना है कि परीक्षित महाराज एक दूसरी विधि है समझने की। परीक्षित महाराज इतना भी गलती नहीं, और वो इतने बड़े भक्त थे, उनको जैसे समाचार मिला कि साधन मृत्यु होगी तो उनके पास भी उपाय था, और वो उसको साथ दे सकते थे जिसे उनको साथ दिया, लेकिन नहीं, वो तैयार थे, वो बिल्कुल तैयार थे किसी भी समय शरीर छोड़ना हो, क्योंकि वैष्णव ऐसे शुद्ध वैष्णव हैं कि उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों बराबर होते हैं, तो वो किसी की सेवा में लगे हुए हैं, कोई संतर नहीं पड़ता, वो हर समय तैयार रहते हैं। उनके लिए मृत्यु भी जो है एक दूसरा जीवन है, एक नया जीवन है ना, आप समझ रहे। अच्छा हाँ, तो और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा आपका प्रश्न है। हाँ श्रोतागण कौन थे? हाँ कौन बताएगा श्रोतागण कौन थे? कृष्ण की पत्नियां सबसे पहले श्रोता वो थी, क्योंकि वो उनके कारण। अच्छा हाँ, ये प्लीज रिमूव व्हीकल नंबर PB31G1476 और इस तरह का I10 HR26R9540 सेंट्रो। हाँ राष्ट्र को ये जो है बंद कर रहे हैं गाड़ियाँ, ये दो गाड़ियाँ हटानी हैं। अच्छा हाँ जी, तो हाँ तो कृष्ण की पत्नियाँ थी, कृष्ण की पत्नियाँ कृष्ण के ग्रह का अनुभव कर रही थी, तो मुख्य श्रोता वो थी। लेकिन उसके साथ में फिर बजनाभी कृष्ण की ग्रह प्रदुष्ट हो गए, और जितनी प्रजा थी वो भी नहीं? और तो अच्छा हाँ 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 बड़ा अच्छा प्रश्न है। वो प्रजा फिर कहाँ से आ गई? जब पांडे मुनि ने बताया कि ऐसी सी बात है कि वो जो प्रजा है आप दिखाई नहीं पड़ रही, यहाँ है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है ना, और भगवान की लीला भी हो रही है दिखाई नहीं पड़ रही, तो सांडिल्य मुनि ने परीक्षित महाराज को आज्ञा दी कि आप जो है आप चारों प्रकार के वर्ण आप यहाँ बसाइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बसाइए, और जो सम्मानित बाणर हैं प्राचीन बाणर हैं उनको भी यहाँ पर बसाइए। तो परीक्षित महाराज ने फिर मथुरा मंडल को बसाया, ठीक है ना। तो ये सब जो है चारों वर्ण की प्रजा है वो बसी, और जो है बानर हैं और पशु हैं वो सब जो है मतलब बसे मथुरा मंडल में, ठीक है ना। और वो जो है ये चारों प्रकार के पाप नहीं करते थे, तो कलयुग का जो है प्रवेश था नहीं, ठीक है ना। इस कारण से जो है परीक्षित महाराज ने चार स्थान दिए या पांच स्थान दिए। हाँ जी इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे एक राजा थे तो वो जो है उनके राज्य में बैलों को धोने का काम नहीं कराया जाता था, बैलों से हमारी या कुछ सामान धोने का काम नहीं कराया जाता था, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। बैल जो है अन्न पैदा करते हैं, वो जो है जो जोतने का काम तो करते हैं बैल, ये तो कार्य है, हल से जोता जाता है बैलों को, और बैलों को जो हाँकने के लिए कुछ प्रहार अगर किया जाए, कुछ आवश्यकता पड़े तो प्रहार किया जा सकता है, लेकिन बैल पिता है, ठीक है ना, तो बहुत आवश्यकता पड़े तो कुछ प्रहार किया जा सकता है बैल पिता, ठीक है। और किसको? राजा उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया था, मथुरा का राजा बनाया था। तो जब मथुरा जरासंध के आक्रमण से जो है अभी जरासंध का आक्रमण होने वाला है और ताल्यवन ने घेर लिया मथुरा को 3 करोड़ मिलिशों की सेना के द्वारा, तो भगवान ने यही मान करके कि अब मथुरा के ऊपर तो बड़ा संकट आ गया है। हालांकि भगवान के लिए कुछ भी संकट नहीं है, ये तो लीला है, लेकिन ये दिखाया उन्होंने कि मथुरा के ऊपर बड़ा संकट आ गया है कि हम अभी ताल्यवन की सेना से युद्ध करेंगे तब जरासंध आ जाएगा और यादवों को पृथ्वी से शून्य करने करेगा। तो उसने ये प्रतिज्ञा ली कि यादवों को पृथ्वी से शून्य कर देगा, तो यदुवंश पर तो बड़ा संकट आ गया। तो उन्होंने फिर सब रातों रात ही मथुरा में सो रहे थे जितने लोग, द्वारका में शिफ्ट कर दिया, द्वारका महल भी बनवा दिए विश्वकर्मा को आगे देकर के, और सोते सोते है ना सोए थे मथुरा में और जागे द्वारका में। जब जागे तो नया स्थान नया घर, अब सब जब जागे तो नई जगह होती है ना, तो सब द्वार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा नहीं मिल रहा है तो सब बोलते द्वारका द्वारका द्वारका, समझे। तो सवेरे जैसे उठे तो आवाज़ फैली द्वारका द्वारका द्वारका, मतलब द्वार कहाँ है द्वार कहाँ है, है ना, कोई नई जगह आ जाए तो पहले दरवाजा घोड़ते दरवाजा कहाँ है बाहर निकलो। तो द्वार का नाम इस तरह से पड़ा द्वारका, आप समझे ना। तो हम बात क्या कर रही थी, उग्रसेन तो मथुरा के राजा थे, तो मथुरा खाली हो गई, जरा समय पर क्या किया मथुरा में आग लगा दी, सब खाली है, मथुरा खाली थी, जरा समय मथुरा में आग लगा दी इस तरह से संतोष हो गया कि चलो मैंने कुछ तो किया, लेकिन भगवान ने सबकी रक्षा कर दी, द्वारका में ले गए, ठीक है ना। और आपका कुछ ध्यान दी, हाँ इनका अच्छा प्रश्न है, गलत तरीके से कुछ जो है कमाई करते हैं और भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो ये जो है मान्य है, ये जो है ये जो कार्य है प्रशंसा, ये प्रशंसा आपका कार्य है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है गलत काम करे इस कारण से तो वो जो है गलत है, गलत तो काम कर ही रहा है वो, कोई व्यक्ति गलत काम में लगा हुआ लेकिन वो फल अगर भगवान को दे रहा है तो वो नहीं भोग रहा है ना, तो ये उसका त्याग माना जाएगा। अब कि गलत काम में तो बना हुआ है, गलत तो किसी से कर रहा है, लेकिन किसने कर रहा है गलत काम, वो उसका फल भोगने के लिए कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूँगा, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति ना करके अगर वो भगवान के सेवा लगा रहा है तो फिर वो दिमाग में उससे आएगा ही कि जब मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है तो गलत काम फिर क्यों कर रहा है, तो गलत काम छोड़ेगा वो, इसलिए भगवान के दुराचारी भी जो है अगर मेरा अनन्य भजन करे तो वह साधु है दुराचारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साधु होकर दुराचार करे, समझे। दुराचार में कृष्ण का भजन करना ये प्रशंसा की बात है, लेकिन कृष्ण के भजन में दुराचार करना निंदा की बात है। जैसे सहजिया, तो सहजिया जो है प्राकृत सहजिया की प्रभुपाल ने बहुत निंदा की, क्योंकि ये लोग कृष्ण का भजन करते हैं और भजन के नाम पर दुराचार करते हैं, सहजिया लोगों का क्या कहना है कि गोपी भाव को जो है हम प्राप्त कर लेंगे, बड़ा सहज है बड़ा आसान है गोपी भाव की नकल करने में, है ना, और किसी प्रकार के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं, तो व्यभिचार भी करते हैं, आप सुन रहे। तो ये क्या है, ये भजन में क्या है दुराचार, तो उसको असाधु माना जाए, असाधु ये निंदा की बात है, लेकिन कोई दुराचार में लगा हुआ है और कृष्ण का भजन कर रहा है ये प्रशंसा की बात है, दुराचार में पहले से लगा हुआ है और दुराचारी माना जा रहा है लेकिन वो कृष्ण का भजन कर रहा है तो उसको भगवान के साधु, आप उसको साधु मानें। ठीक है, जो साधु कहलाता है किसी के भजन में लगा हुआ और फिर दुराचार कर रहा है वो क्या है? असाधु। साधु कहला रहा है, अपने को साधु कहला रहा है, इन लोगों की नजरों में वो जो है असाधु है, दुराचार में लगा हुआ है, लेकिन किसी का भजन उसमें वो कर रहा है ना, ये तो उसकी साधुता है। आप समझ रहे अंतर है कि नहीं? दिन रात का अंतर है, और कोई प्रश्न? कृष्ण को जो है सब लोग द्वारकाधीश मानते हैं, द्वारका की पूरी पूजा कृष्ण को द्वारका का राजा मानती है ना, लेकिन कृष्ण मानते हैं उग्रसेन को राजा, उग्रसेन भी मानते हैं कि कृष्ण ही राजा है, हमारे स्वामी यही है, हमारे रक्षक यही है ना, लेकिन कृष्ण शिष्टाचार के अनुसार उग्रसेन ही सब आज्ञा देते हैं, जो कुछ भी करना है राजा को बता करके और राजा से आज्ञा लेकर के सब कार्य करते हैं, यदुवंशी में जब विनाश हो गया, जब यदुवंशी में विनाश हो गया तो उग्रसेन भी जो है उसमें थे, जो भी हो उसका वर्णन नहीं आया मतलब क्या हुआ, उग्रसेन ने शरीर छोड़ दिया, इस शोक में शरीर छोड़ दिया, जैसे भी हो उग्रसेन नहीं रहे थे, वसुदेव जी ने भी शरीर छोड़ दिया, ठीक है ना, आपका इसके लिए जो है जीव गोस्वामी बताते हैं कल्प भेद से जो है ये संभव है, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है एक बार है ना, इसलिए अंतर होता है, लेकिन फिर भी महाभारत में क्या आपने पढ़ा है कि परिचय हरण कर ली थी, हाँ वो चलिए तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा कल को भेजते हैं, नहीं कलयुग का तो उसमें वर्णन नहीं ना, कलयुग के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया ये वर्णन नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमन भागवतम की जय, जगद्गुरु प्रभुपाल की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, श्री श्री गौरनदाय भगवान की जय हो, हरिओम।